उदय ने इप्सिता की बगल में आकर उसे साइड हग करते हुए कहा, वाओ ईशी, हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि कुंवर साहब ने आपके लिए मम्मी पापा से बात की और वे आपको एग्जाम दिलाने के लिए ले जा रहे हैं। इप्सिता ने उदय की तरफ देखते हुए कहा, उदय भाई, हमें पिंच करिए ना, हमें भी अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है कि जो कुछ भी हमने सुना और यहाँ पर जो कुछ हुआ वो सब सच था। मम्मी पापा सच में उनके कहने पर मान गए, हमें उनके साथ भेजने के लिए भी तैयार हो गए और हमारे एग्जाम देने जाने में भी अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही दूसरे शहर भेजने में। उदय ने इप्सिता की बात सुनकर उसके हाथ पर धीरे से पिंच किया। इप्सिता खुशी से उछलते हुए बोली, हाँ ये सच है, हम सच में अपना एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, नहीं तो हमें लगा था कि शादी तक हम यहाँ पर ही रह जाएंगे हमेशा के लिए। इप्सिता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उदय भी उसे देखकर खुश हो गया। इप्सिता ने आज न जाने कितने दिनों के बाद पूरी फैमिली के साथ खुशी खुशी डिनर किया और वो अपनी पैकिंग करने के लिए सीधे अपने बेडरूम में चली गई। इप्सिता बहुत खुश थी। उसने जल्दी जल्दी अपने कुछ कपड़े, जरूरी सामान और सारी बुक्स पैक की। सारा सामान पैक करने के बाद उसने जल्दी से अपना मोबाइल फोन उठाते हुए कहा, नंदिनी से बात करके उसे बता देती हूँ कि मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, वो सच में ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। इप्सिता जल्दी से अपने बेड पर बैठी और उसने अपना मोबाइल फोन उठाकर नंदिनी को कॉल किया। नंदिनी ने तुरंत उसका कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो ईशु, तू ठीक है ना, इतनी रात में कॉल कर रही है। इप्सिता ने घड़ी की तरफ नजर घुमाई। पैकिंग करते हुए उसने काफी समय बिता दिया था, अभी रात के 10:30 बज रहे थे। अपने हिसाब से एक्साइटमेंट में उसने काफी जल्दी सारी पैकिंग पूरी कर ली थी, इसलिए इप्सिता नंदिनी की बात को इग्नोर करते हुए बोली, अरे तुम ये सब छोड़ो नंदिनी, हमारे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। हमसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था, इसलिए हमने तुरंत तुम्हें कॉल कर लिया। तुम्हें पता है क्या हुआ? नंदिनी इप्सिता को इतनी ज्यादा एक्साइटेड और खुश देखकर बोली, क्या बात है, तेरी एक्साइटमेंट देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी चीज हो गई है, कहीं तूने किसी भूत प्रेत को तो नहीं देख लिया? इप्सिता ने मुंह बनाते हुए कहा, कैसी बातें करती हो तुम भी, भूत प्रेत को देखकर भला हम इतने खुश होंगे क्या? नंदिनी ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसकी क्यूरियोसिटी भी थोड़ी बढ़ने लगी और उसने कहा, अच्छा ठीक है ये सब छोड़ो, जल्दी बताओ क्या हुआ है, तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अब तुम जल्दी से मुझे वो गुड न्यूज़ दो ताकि मैं भी खुश हो जाऊं। इप्सिता ने तुरंत ही उसे बताया, अभिमन्यु ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, वो हमें लेकर मुंबई आ रहे हैं, तुम्हारे साथ हम भी अब अपना एग्जाम दे पाएंगे। जैसे ही नंदिनी ये बात सुनी वो बिल्कुल शॉक हो गई और उसने हैरानी से पूछा, क्या क्या कहा तुमने? अभिमन्यु जीजू ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, वो तुम्हें लेकर एग्जाम दिलाने आ रहे हैं? इप्सिता ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हमें भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सच में हमारी कल रात की फ्लाइट है और उन्होंने अपने घर में भी बात की और यहाँ आकर मम्मी पापा से भी परमिशन ली। तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात, मम्मी पापा ने उनकी बात टाली नहीं, उन्होंने जैसे ही कहा कि इप्सिता हमारे साथ मुंबई जाएगी मम्मी पापा रेडी हो गए। नंदिनी ने इप्सिता की बात सुनकर कहा, हाँ भला वे क्यों मना करेंगे, जब उनका होने वाला दामाद ही उनकी बेटी को एग्जाम दिलाने के लिए ले जाने के लिए कहेगा तो? इप्सिता ने खुश होते हुए कहा, हाँ हमने भी यही बात बताने के लिए तुम्हें कॉल किया था। नंदिनी ने इप्सिता को इतना खुश देखकर कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपनी सारी पैकिंग अच्छे से कर लो और कुछ भी भूलना मत और जल्दी से आओ, अब तो मुझे भी इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि शायद मुझे रात भर नींद ही ना आए, मैं तेरा वेट करूंगी। और हाँ आज आराम से सो लेना तुम, वरना कल ट्रैवल करने में थक जाओगी। इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओह थैंक्स फॉर द टिप्स, और हमें पता था तुम हमसे भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगी, इसीलिए हमने सबसे पहले तुम्हें बताया, अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है, चलो अब हम तुमसे कल मिलते हैं। इप्सिता की इन बातों पर नंदिनी ने भी हामी भरी और उसने कॉल काट दिया। इप्सिता काफी ज्यादा खुश थी और वो अपने बचे हुए सामान को जल्दी जल्दी पैक करने लगी। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर शहर का ही दूसरा हिस्सा, राणावत राज परिवार की पुश्तैनी हवेली का डाइनिंग एरिया। डाइनिंग टेबल पर अर्पिता अपनी सास ससुर और जयराज के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। अर्पिता की सास ने अर्पिता को घूरते हुए कहा, अर्पिता हमें आपसे ये पूछना था कि आप हमें हमारे राणावत राज परिवार के वारिस से कब मिलवा रही हैं? आपकी शादी को 2 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक आपने हमें एक खुशखबरी नहीं सुनाई। कब से हम सब ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अब शायद आप हमें हमारे पोते का मुंह दिखाएंगी, लेकिन आपको तो जैसे हमारे राज परिवार की कोई फिक्र ही नहीं है। हम कितनी उम्मीद के साथ आपको राणावत राज परिवार की बहू बनाकर लाए थे, लेकिन आपने तो हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अर्पिता जो अभी तक चुपचाप बैठकर खाना खा रही थी, उसने जैसे ही अपनी सासूमा की ये जली कटी बातें सुनी वो खाते खाते रुक गई और उसने अपनी नजरें उठाकर जयराज की तरफ देखने लगी। जयराज चुपचाप खाना खा रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसने अपनी माँ की बातें सुनी ही नहीं, वो चुपचाप खाना खाने में लगा हुआ था। अर्पिता जयराज की तरफ बड़ी ही उम्मीद के साथ देख रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि शायद जयराज आज कुछ तो बोलेगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। अर्पिता ने अपनी सास की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। तब जयराज की माँ ने अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा, अर्पिता आप हमारी बात सुन रही है ना, हम कुछ कह रहे हैं। अर्पिता ने धीरे से बस अपना सिर हिलाया और वो खाना छोड़कर उठ गई और वहां से सीधे अपने कमरे में चली गई। अर्पिता ने अपना सिर पकड़ा और वो रोते हुए बोली, हमें समझ में नहीं आता, सब लोग एक ही बात को लेकर हमें बार बार ताने क्यों मारते रहते हैं। अर्पिता अपनी सास की बातें सोच सोच कर रो रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था और वो अपने बेड पर अपने घुटनों को मोड़कर बैठी हुई थी और घुटने पर अपना सिर रखकर बस रोती ही जा रही थी। रोते रोते अर्पिता की आंखें सूज गई और उसने अपने आंसुओं को पोंछा। उसकी आंखें दर्द कर रही थी। कुछ देर बाद कमरे का गेट खुला और जयराज कमरे के अंदर आया। उसने अर्पिता को रोते हुए देखा, लेकिन उसने उसे ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे मानो वो उसे कमरे में देख ही नहीं रही हो। वो चुपचाप जाकर बेड की अपनी साइड पर बड़े ही आराम से बैठ गया। अर्पिता उसे इस तरह आराम से बेड पर बैठा देखकर अपने मन में बोली, हमें तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या सच में इन सारी चीजों में हमारी ही गलती होती है जो हमें सबसे बार बार एक ही चीज के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। और जयराज जी तो बिल्कुल आराम से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, उन पर तो इस बात का जरा भी असर नहीं होता। यहाँ तक कि वो तो हमें रोते देखकर भी ये नहीं पूछते कि आखिर हम रो क्यों रहे हैं। अर्पिता को खुद से जितनी भी शिकायतें थी वो सब वो मन में ही बोल रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि जयराज से बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो यही सोचकर दोबारा रोने लगी। उसे रोते देखकर जयराज ने अपनी नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो बुरी तरह से रो रही थी, उसकी सिसकियां बढ़ गई थीं और उसकी आंखें लगभग पूरी तरह से लाल नजर आ रही थी। जयराज ने अर्पिता को देखकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ये क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने, चुपचाप सो जाओ, हम तुम्हारा कोई रोना धोना देखने वाले नहीं है, समझी तुम। अर्पिता ने जयराज के मुंह से ये बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, आप हमारे पति हैं, हम किस लिए रो रहे हैं आप एक बार रीजन भी नहीं पूछेंगे।
जयराज ने उसकी बात सुनकर ऐसे बिहेव किया जैसे मानो वो उसकी बात से काफी ज्यादा इरिटेट हो गया हो। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, नहीं पूछना हमें आपसे कुछ भी, आप तो वैसे भी छोटी छोटी चीजों को लेकर रोने लग जाती हो सिर्फ और सिर्फ मेरा अटेंशन पाने के लिए। जयराज बोल ही रहा था कि अर्पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, छोटी छोटी सी बात है ये आपके लिए, आपकी माँ बार बार हमें बच्चा ना होने के लिए ताना मारती है और ये आपके लिए छोटी सी बात है? आपको पता है ये बात हमें किस तरह से हर्ट करती है? हम लोग उनको कोई जवाब भी नहीं दे पाते क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या कहें उनसे, कि हमारे पति ही अब हमारे करीब ही नहीं आते हैं तो हम उन्हें पोते पोती कहाँ से देंगे। कभी सोचा है आपने, जब लोग हमसे बार बार एक ही सवाल पूछते हैं तो हमारे दिल पर क्या बीतती होगी? कभी नहीं सोचा आपने? और हम सिर्फ आपकी इज्जत बचाने के लिए हर बार चुप रह जाते हैं। नहीं समझ में आता हम उन लोगों से क्या कहें। अगर हम उनसे ये बोलेंगे कि हमारे पति हमें प्यार करना तो दूर की बात है, हमारी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखते, तो क्या सोचेंगे लोग आपके बारे में? ये सोचा है आपने? अर्पिता के इस तरह बोलने पर जयराज उसे गुस्से से घूरते हुए देखने लगा और उसने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, क्या मतलब है आपका? अर्पिता ने एकदम सीरियस होकर कहा, आप हमारे कहने का मतलब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। अगर हम बच्चे के लिए ट्राई ही नहीं करेंगे तो कैसे कंसीव कर पाएंगे? हम दोनों को ही अपनी सारे मनमुटाव साइड में रखने होंगे, तभी हम अपनी फैमिली आगे बढ़ा सकते हैं और आपके राज परिवार को वारिस दे सकते हैं। पिछले 2 सालों में आज पहली बार ही अर्पिता ने एकदम सीधी तरह से इस बारे में कोई बात की थी, इसीलिए जयराज काफी हैरान रह गया, क्योंकि शायद उसे अर्पिता के इतना ज्यादा बोल्ड होने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसकी भी सहन शक्ति अब जवाब दे गई थी, आखिर बेवजह वो भी कितने ताने सुनती। क्रमशः